खुदावन खुदा, तू जो अजीम खुदा है, तेरी नेमतों तेरी बरकतों के लिए हम सब तेरे शुक्रगुजार हैं। सो आज के दिन में खुदावन, तो हम सब के साथ हो और जो कुछ भी सीखें, हमारी अक्लों को रोशन कर, हमारे दिलों की, हमारी समझों की आँखों को खोल, ताकि जो कुछ सुने उसे अपनी ज़िंदगी में जगा दें, ताकि 100 गुना फल लाएं। खुदावन यीशु मसीह के नाम में ये दुआ मांगते हैं, आमीन। मेरे साथ निकालें इफ़्सियों पहला बाप, उसकी 19वीं आयत। इफ़्सियों पहला बाप, उसकी 19वीं आयत, नए अहदनामा में से गलतियों के खत के बाद इफ़्सियों का खत आपको मिलेगा। और पालूस रसूल यहाँ पर रूहुल कुद्दस की रहनुमाई में, उसके कुदरत में, उसके जोर में, दिल की खुशी से कैद की हालत में खुदावन की मर्जी को पूरा करते हुए, उसकी खुशखबरी को फैलाते हुए ये बातें लिखता है कलीसिया के लिए, उस वक्त की कलीसिया के लिए और आज की कलीसिया के लिए। वो कहता है 19वीं आयत में, और हम ईमान लाने वालों के लिए उसकी बड़ी कुदरत क्या ही बेहद है, उसकी बड़ी कुव्वत की तासीर के मुआफिक। आमीन। यहां पर खुदा का बंदा पालूस रसूल हर ईमानदार से जिसने यीशु मसीह को कबूल किया है, उसे कहता है कि खुदा की कुदरत हमारे लिए दस्तियाब है, खुदा की कुव्वत हमारे लिए मुहैया है, खुदा की जो ताकत है वो हर ईमानदार के साथ है। क्योंकि हमारा खुदा कमज़ोर खुदा नहीं, हमारा खुदा ऐसा खुदा नहीं कि अगर हम दुआ करें तो वो सोता पाया जाए, नहीं। हमारा खुदा ऐसा खुदा नहीं कि अगर हम उसके हजूर फरियाद करें तो वो सुनता नहीं, क्योंकि वो सुन सकता है। वो जिंदा खुदा है, वो बोलता है, वो चलता है, वो बातें करता है, वो बातों को सुनता है। क्यों? क्योंकि खुदा का कलाम हमें सिखाता है। मेरे साथ निकालें जबूर 115। जबूर 115 में खुदा का बंदा, खुदा का कलाम हमें गवाही देता है कि हमारा खुदा कैसा खुदा है और दूसरों का खुदा कैसा खुदा है। जबूर 115 में बड़े वाज़ेह तौर पर लिखा है, हमको नहीं ए खुदावंद, हमको नहीं, बल्कि तू अपने ही नाम को अपनी शफकत और सच्चाई की खातर जलाल बख्श। लिखने वाले कहता है, जैसे यूहन्ना नबी ने कहा कि खुदावंद जरूर है कि मैं घटूं और तू बढ़े। क्या रखा था यूहन्ना नबी ने? खुदावंद जरूर है कि मैं घटूं और तू बढ़े, यानी कि मैं कम होता जाऊं और तू बढ़ता जाए, यानी कि मेरी इज्जत नहीं बल्कि तेरी इज्जत हो, मेरा जलाल जाहिर ना हो बल्कि तेरा जलाल जाहिर हो। सजबूर 115 की पहली आयत कहती है, लिखने वाला कहता है, खुदावन हमको नहीं, हमको नहीं, शफकत और सच्चाई तेरे ही नाम को मिले, जलाल तेरे ही नाम को मिले। और दूसरी आयत में कहता है, कौमें क्यों कहें कि अब उनका खुदा कहाँ है? हमारा खुदा तो आसमान पर है। हमें ये बात याद रखने की जरूरत है, ना कि सिर्फ दुआए रबानी में पढ़ने की जरूरत है कि ऐ हमारे बाप तू जो आसमान पर है। हमारा खुदा आसमान का खुदा है, ऐसा खुदा है जो कुदरत का, जो ताकत का, जो अजीब मोजजात का करने वाला खुदा है। क्यों कौमें कहें? जब ईमानदारों को देखते हैं, ईमानदारों से मुराद ये नहीं कि उन्होंने झूठ नहीं बोला, ये नहीं कि उन्होंने कम तोला, यानी कि वो लोग जो यीशु मसीह पर ईमान रखते हैं, बाइबल मुकद्दस उनको जमीन पर और आसमान के तमाम फरिश्तों के सामने खुदावन खुदा कहता है कि ये मेरे बेटे पर ईमान रखते हैं, इसलिए मैं इनको रास्तबाज कहूंगा। इसलिए मैं इनको ईमानदारों का लकब दूंगा, नाम दूंगा। मैं इसलिए खुदा कहता है कि तुमको मुकद्दसीन कहूंगा। आगे मुकद्दसीन की जिंदगी गुजारना, आगे रास्तबाजी की जिंदगी गुजारना, आगे ईमानदारों की तौर पर जिंदगी इस जमीन पर बसर करना, ये हम सब की अपनी मर्जी है। लेकिन खुदा ने हमें ये नाम, ये ताकत, ये इख्तियार, ये हक बख्शा है। इसलिए कौमें क्यों कहें कि अब उनका खुदा कहां पर है, अब उनका खुदा कहां पर है। और जबूर नवीस यही बात सिखाता है और लिखा है दूसरी आयत में, कौमें क्यों कहें, जबूर 115 भाई जवेद उसकी पहली दूसरी आयत को पढ़ रहे हैं, कौमें क्यों कहें कि अब उनका खुदा कहां है। हमारा खुदा तो आसमान पर है, उसने जो कुछ चाहा वही किया। अगर आज आप किसी तरह के भी हालात में से गुजर रहे हैं तो इसमें खुदा की मर्जी शामिल है। हमारे लिए भलाई इसमें है कि उसे कबूल कर लें। बेशक बहुत दफा हमें ऐसा दिखता है कि हमारे साथ ज्यादती की गई है, बातों बातों में हमें नीचा किया गया है, लेकिन बहुत दफा सारे तंज को, जिसे कहते हैं मलामत को, झूठी गवाही को, झूठी बातों को, उस कड़वे के प्याले को हमें पी जाना ही बेहतर होता है। क्यों? हम यीशु मसीह जैसा रवैया इख्तियार करते हैं कि ये नहीं जानते कि ये क्या कहते हैं, ये नहीं जानते कि ये क्या करते हैं। इसलिए खुदा जो चाहता है वो करता है। खुदा ने अपनी मर्जी ही से बियाबान में बनी इसराइल कौम को आजिज करने के लिए, हलीम करने के लिए, उनको ये बात सिखाने के लिए कि वो जलाल उनको ही नहीं, वो कुव्वत उन्हीं को नहीं, वो इज्जत उन्हीं के नाम को नहीं, बल्कि मैं चाहता हूँ कि वो नीचा होना सीखें, वो मुझ खुदा को जाने। और ये खुदा ने खुद चाहा कि वो करे। नहीं यकीन? कडो हवाला अस्तिस्ना उसका 8 बाप, अस्तिस्ना उसका 8 बाप। जब खुदा का कलाम मूसा नबी को खुदावन ने दिया तो खुदा ने उनको हुक्म दिया, खुदा ने अस्तिस्ना पुराने हदनामा में ये 8 बाप उसकी पहली आय से हम ये देख सकते हैं। अस्तिस्ना की किताब का मतलब, अस्तिस्ना का मतलब यानी के दोबारा हुक्म देना, शरीयत देना। ये मूसा की 5वीं किताब है जिसमें क्या है, जिक्र मिलता है कि वो वादा की जमीन पर दाखिल होंगे, उससे पहले कि वो दाखिल हों खुदा उनको हुक्म करता है, खुदा उनको नसीहत करता है, खुदा उनको सलाह देता है कि तुम मुझ ही को खुदा जानना, तुम मुझ ही को मानना, तुम मेरे हजूर ही झुकना, और कोई भी तुम्हारा मबूद ना हो और कोई भी तुम्हारा खुदा ना हो। आपके दरमियान एक बहुत खूबसूरत खानदान बैठा हुआ है जिनकी जिंदगी में ये गवाही जारी है कि उन्होंने अपनी जिंदगी को, अपने दिल को यीशु मसीह को दिया है। ऐसे लोगों से खुदा बहुत ज्यादा मोहब्बत रखता है। तो यहां पर खुदा का बंदा मूसा उनको सलाह दे रहा है, उनको बता रहा है और उनको कहता है, जब हम पढ़ते हैं पहली आय से, सब हुक्मों पर जो आज के दिन मैं तुझको देता हूं तुम इख्तियार करके अमल करना, ताकि तुम जीते और बढ़ते रहो, और जिस मुल्क की बाबत खुदावन ने तुम्हारे बाप दादा से कसम खाई है, तुम उसमें जाकर उस पर कब्जा करो, और तू उस सारे तरीका को याद रखना जिस पर इन 40 बरसों में खुदावन तेरे खुदा ने तुझको इस बियाबान में चलाया, ताकि तुझको आजिज करके अजमाए और तेरे दिल की बाबत दरियाफ्त करे कि तू उसके हुक्मों को मानेगा या नहीं। मुसीबत, दुख, तकलीफ, परेशानी, बीमारी, कैसा भी हालात होते हैं उसमें खुदा की मर्जी शामिल है। अबलीस आपको छू नहीं सकता, अबलीस आपका कुछ भी बगाड़ नहीं सकता, ना कोई बदरू, ना कोई जादू टूना, ना कोई भी चीज़ आपके खिलाफ़ काम नहीं कर सकती अगर खुदा की तरफ से इजाज़त ना हो। अबलीस को इतनी कुदरत हासिल नहीं, और यही वो कुदरत है जो ईमानदारों को बख्शी गई है। क्या हम पढ़ रहे हैं? इफिसियों पहला बाब उसकी 19वीं आयत, और हम ईमान लाने वालों के लिए उसकी बड़ी कुदरत क्या ही बेहद है। किसकी कुदरत? उसकी। उसका लफ्ज किस लिए इस्तेमाल हुआ है? यानी खुदा के लिए। उस खुदा की कुदरत बेहद है, अबलीस उसका मुकाबला नहीं कर सकता। कोई भी दुनिया में ऐसी ताकत नहीं जो खुदा के हजूर और उसके सामने सर उठा सके। सो खुदा ने उनको बियाबान में चलाया ताकि अजमाए, ताकि वो आजिज हों। आजिज का मतलब है यानी कि हलीम होना, पस करना, अपने आप को, अपनी खुदी का इनकार कर देना। जैसे यीशु मसीह ने कहा, जिसे कह सकते हैं, यीशु मसीह ने कहा बड़े सादा और बहुत खूबसूरत अल्फाजों में, खुदावंद मेरी नहीं बल्कि तेरी मर्जी पूरी हो, मेरी नहीं बल्कि तेरी मर्जी पूरी हो। हम एतवार की इबादत में नहीं, एतवार को नहीं, आने वाले दिनों में सीखेंगे किस तरह बियाबान में खुदा ने उनको आजिज किया। सो चलें हमारे पिछले हवाले की तरफ। ये सबूत था कि खुदा जो कुछ भी करता है, वो जो कुछ भी चाहता है, वो अपनी मर्जी से होने देता है, क्योंकि वो जानता है कि हमारे लिए अच्छा क्या है। जबूर 115 उसकी 3-4 आयत को पढ़ेंगे, 4 आयत को पढ़ेंगे, और खुदा का कलाम कहता है उनके बुत सोना, उनके बुत चांदी और सोना है, यानी आदमी की दस्तकारी। खुदा बनी इसराइल कौम को कहता है कि जो बुत तुमने मेरे आगे बनाए हैं वो तुम्हारे सोने चांदी के बुत हैं और वो तुम्हारे हाथ का काम है। दूसरे लफ्जों में कि तुमने अपना खुदा खुद अपने हाथों से घड़ा है। जैसे कम्हार बर्तन बनाता है, मिसाल के तौर पर अगर वो बर्तन बनाकर कहे कि ये मेरा बर्तन देवता है, बर्तन खुदा है, तो उसकी वो इबादत करना शुरू कर दे, तो क्या हुआ? इंसान का बनाया हुआ है। तो खुदा यहां पर कहता है उनके बुत चांदी और सोना है, यानी आदमी की दस्तकारी। उनके मुंह हैं पर बोलते नहीं, आंखें हैं पर देखते नहीं, कान हैं पर सुनते नहीं, नाक हैं पर सूंघते नहीं, उनके हाथ हैं पर वो छूते नहीं, पांव हैं पर वो चलते नहीं, उनके गले से आवाज नहीं निकलती, उनके गले से आवाज नहीं निकलती। सो हम जिस खुदा की इबादत करते हैं, खुदा का शुक्र हो कि वो जिंदा है, वो बोलता है, वो आपके दुखों में शरीक होता है, वो आपके दुखों को महसूस करता है, वो आपकी तरह आजमाया गया, उसने आपकी तरह जिस्म इख्तियार किया और इस बड़े दिन के दिन को हमें बख्श दिया कि हम उसकी पैदाइश, उसकी सालगिरह, उसकी बर्थडे जिसे कहते हैं मनाने वाले बने। तो वो खुदा जिंदा है, बोलता है, सुनता है, चलता है और हमारे दुखों को महसूस करता है। सो उस खुदा की कुदरत ने ये सब कुछ किया है कि आज आप यहां पर मौजूद हैं, इसलिए हमें ये कुदरत जो हासिल है इसे इस्तेमाल करने की जरूरत है। इस्तेमाल किस तरह करेंगे? जैसे एक शायर गाने वाला कहता है, गिर गया मैं तूफाना विच, मैनू लोड़ तेरी, आ यीशु नासरी, मैनू लोड़ तेरी। जब अपने मुश्किल हालात में हम ऐसे अल्फाज कह सकते हैं, यीशु मुझे ज़रूरत है तेरी, कह सकते हैं यीशु मसीह मैं तूफाना च घिर गया वा तेरे बगैर, ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੂੰ ਯਾਦ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਦਿਲਾ ਸਕਦੇ, ਲੇਕਿਨ ਅਸੀਂ ਯਾਦ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਹਾਂ, ਇੱਕ ਵਾਕਿਆ ਸੀ ਜਦੋਂ ਪਤਰਸ ਤੇ ਬਾਕੀ ਸ਼ਾਗਿਰਦ ਘਬਰਾਏ ਹੋਏ ਸੀ। ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ, ਅਸੀਂ ਤੇ ਮਰਨ ਲੱਗੇ, ਤੂੰ ਸੁੱਤਾ ਪਿਆ ਵਾ, ਸਾਡਾ ਕੀ ਹੋਏਗਾ, ਉੱਠ। ਤੇ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਤੁਹਾਡਾ ਈਮਾਨ ਕਹਾਂ ਪਰ ਗਿਆ? ਔਰ ਵੋ ਉਠਾ, ਔਰ ਉਸੀ ਕੁਦਰਤ ਨੇ ਤੂਫਾਨ ਕੋ ਰੋਕ ਦਿਆ। ਯੇ ਵਹੀ ਕੁਦਰਤ ਹੈ ਜੋ ਆਪਕੇ ਅੰਦਰ ਹੈ। ਹਾਲੇਲੂਯਾ। ਆਪ ਮੇ ਸੇ ਕਿਤਨੇ ਯਕੀਨ ਕਰਤੇ ਹੈ ਬਾ ਮੁਤਾਬਕ ਬਾਇਬਲ ਮੁਕੱਦਸ, ਇਨਸਾਨੋ ਕੀ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਮੈਂ ਕਹਿਤਾ ਹੂੰ ਕਿ ਖੁਦਾ ਕੇ ਕਲਾਮ ਕੇ ਮੁਤਾਬਕ? ਆਪਕੋ ਬਹੁਤ ਸੇ ਇਨਸਾਨ, ਔਰ ਬੜੇ ਅਫਸੋਸ ਸੇ ਕਹਿਣਾ ਪੜਤਾ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਦਫਾ ਖੁਦਾ ਕੇ ਖਾਦਮ ਕਹੇਂਗੇ ਕਿ ਅਭੀ ਆਪਕੋ ਰੂਹੁਲ ਕੁਦਸ ਨਹੀਂ ਮਿਲਾ, ਅਭੀ ਰੂਹੁਲ ਕੁਦਸ ਨਾਜ਼ਲ ਨਹੀਂ ਹੁਆ। ਬਾ ਮੁਤਾਬਕ ਬਾਇਬਲ ਮੁਕੱਦਸ 2012 ਸਾਲ ਪਹਿਲੇ ਕੀ ਬਾਤ ਹੈ, ਜਬ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਆਇਆ ਤੋ ਉਸਨੇ ਯੇ ਵਾਦਾ ਕੀਆ ਥਾ। ਬੇਟੀ, ਜਬ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਆਇਆ ਥਾ ਤੋ ਉਸਨੇ ਵਾਦਾ ਕੀਆ ਥਾ ਕਿ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਪਾਕ ਰੂਹ ਕੋ, ਆਪਣੀ ਰੂਹ ਕੋ ਭੇਜੂੰਗਾ ਜੋ ਤੁਹਾਰੇ ਉੱਪਰ ਨਾਜ਼ਲ ਹੋਗੀ। ਤੋ ਸ਼ਗਿਰਦੋਂ ਪਰ ਕਿਆ ਹੁਆ? 35 ਕੋ ਉਸਕੇ ਦਿਨ ਰੂਹ ਨਾਜ਼ਲ ਹੁਆ। ਸੋ ਰੂਹ ਕੁਦਸ ਨਾਜ਼ਲ ਹੁਆ ਹੈ ਆਜ ਸੇ 2000 ਸਾਲ, ਕਹਿ ਸਕਤੇ 2012 ਚੜ ਚੁਕਾ ਹੈ, ਨਾਜ਼ਲ ਹੁਆ ਹੈ, ਔਰ ਵੋ ਜ਼ਮੀਨ ਪਰ ਹੈ, ਔਰ ਵੋ ਇਮਾਨਦਾਰੋਂ ਕੇ ਅੰਦਰ ਰਹਿਤਾ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਇਮਾਨਦਾਰ ਉਸਕੀ ਆਵਾਜ਼ ਕੋ ਸੁਨਤੇ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਲਈ ਆਪ ਮੇ ਸੇ ਕੌਣ, ਕਿਸ ਕਿਸ ਨੇ ਯਿਸੂ ਪਰ ਯਕੀਨ ਕੀਆ ਹੁਆ ਹੈ? ਸਭ ਨੇ ਕੀਆ, ਤੇ ਉਹਦਾ ਮਤਲਬ ਰੂਹ ਕੁਦਸ ਕਿੱਥੇ ਰਹਿੰਦਾ? ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ। ਕਿੱਥੇ ਰਹਿੰਦਾ? ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ। ਅਗਰ ਕੱਲ ਨੂੰ ਕੋਈ ਆਣ ਕੇ ਕਹੇ ਕਿ ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਰੂਹ ਕੁਦਸ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਬਾਨਾਂ ਨਹੀਂ ਬੋਲਦੇ, ਤੇ ਕੀ ਕਹੋਗੇ? ਤੁਸੀਂ ਝੂਠੇ ਹੋ ਜੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਲਾਮ ਸੱਚਾ ਵਾ, ਬੰਦਾ ਝੂਠਾ ਵਾ। ਮੈਂ ਗਲਤ ਬਿਆਨੀ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਲੇਕਿਨ ਖੁਦਾ ਦਾ ਕਲਾਮ ਗਲਤ ਬਿਆਨੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਇਸ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਬੰਦਿਆਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਖੁਦਾ ਦੇ ਕਲਾਮ ਨੂੰ ਦਰਜਾ ਦੇਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਆ। ਇਸ ਲਈ ਅਸੀਂ ਇਸ ਗੀਤ 'ਤੇ ਖਤਮ ਕਰਾਂਗੇ, ਅਤੇ ਫਿਰ ਖੁਦਾਵੰਦ ਦੇ ਹਜ਼ੂਰ ਦੁਆ ਕਰਾਂਗੇ। ਸਾਰੇ ਨੇ ਬੋਲ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਕਹਿਣਾ ਵਾ, ਕਿਰ ਗਿਆ ਮੈਂ ਤੂਫਾਨਾਂ ਵਿੱਚ, ਮੈਨੂੰ ਲੋੜ ਤੇਰੀ, ਆ ਯਿਸੂ ਨਾਸਰੀ, ਮੈਨੂੰ ਲੋੜ ਤੇਰੀ, ਆ ਯਿਸੂ ਨਾਸਰੀ, ਮੈਨੂੰ ਲੋੜ ਤੇਰੀ, ਹੱਥ ਤੇਰਾ ਛੋਟਾ ਨਹੀਂ ਜੋ ਨਾ ਬਚਾ ਸਕੇਗਾ, ਕੰਨ ਤੇਰਾ ਭਾਰਾ ਨਹੀਂ ਜੋ ਨਾ ਦੁਆ ਸੁਨੇਗਾ, ਹੱਥ ਆਪਣਾ ਯਿਸੂ ਵਦਾ, ਹੱਥ ਆਪਣਾ ਯਿਸੂ ਵਦਾ, ਮੈਨੂੰ ਲੋੜ ਤੇਰੀ, ਆ ਯਿਸੂ ਨਾਸਰੀ, ਮੈਨੂੰ ਲੋੜ ਤੇਰੀ। ہماری دن رات یہی دعا ہونی چاہیے کہ خدا پاک رو جو ہمیں بخشا گیا ہے ہمیں قوت، ہمیں طاقت، ہمیں زور دے، تاکہ ہم ضرور جی بھائی کامران کے لیے بھی دعا کریں گے کہ خدا اس پاک رو کے وسیلہ سے ہم سب کو قوت اور طاقت دے۔ بھائی کامران جو ملیشیا میں ہیں، خدا ان کی حفاظت کرے، اس مقصد کے لیے بھی دعا کریں گے۔ سو آئیں ہم سب خدا کے حضور جھکیں۔ خداوند تیرا شکر، تیرے نام کی تعریف کرتے ہیں، تیرے کلام کے لیے جو آج سیکھا گیا ہے، ہم سب کو اس کے وسیلہ سے قوت، طاقت اور یقین کرنے کی خداوند خدا برکت بخش، تاکہ ہم یقین کریں اور بہت سی برکت پائیں، اور تیرا بیٹا خداوند یسوع مسیح نام عزت اور جلال پائے۔ سو خدا باپ